الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن والصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. सारे सेशंस में आवाज़ देर है, जो खवातीन का जूम है उसमें वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, आवाज़ कटने वगैरह, क्योंकि इसमें सिग्नल्स काफ़ी कम बता रहे हैं। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है आवाज़ में? ओके, अलहमदुलिल्लाह। तो इन आयात की तस्वीर हम कुरान की जिल्द नंबर 6 से पढ़ रहे थे। इंसानों को आब रसानी का कुदरती अजीब व गरीब निज़ाम, ये पेज नंबर 305 305 के ऊपर, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वह अनज़लना मिनस समा इमा बिकदर, इसकी तफसीर में लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान से एक 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 प्री कैलकुलेटेड, एक मुकद्दर मकदार में, जिसको मकदार भी हम इसीलिए कहते हैं उर्दू जुबान के अंदर, तो एक मकदार में पानी बरसाया, राइट, नाजिल किया, फिर उसको हमने जमीन के अंदर जगह दे दी। फस करना फिल अर्द, ठीक है, जमीन में उसको ठहरा दिया। व इन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, और हम इसको ले जाने पर भी कुदरत रखते हैं, यानी जिस तरह लाए हैं हम उसी तरह इसको ले जा भी सकते हैं, तुमसे दूर भी कर सकते हैं। तो इसके तहत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इंसानों को आब रसानी का कुदरती अजीब व गरीब निज़ाम के का उनवान बांध करके लिखते हैं कि इस आयत में आसमान से पानी बरसाने के जिक्र के साथ एक कैद बेकदर की बढ़ाकर, ठीक है, यानी ये जो जिक्र किया भाई हमने आसमान से पानी नाजिल किया, तो इसके साथ ना एक एक क्वालिफायर भी एड कर दिया, ठीक है, एक कैद, यानी एक ऐसी चीज जो कि इसको फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर देती है या फर्दर इसको जो है वो एक्सप्लेन करती है, वो लफ्ज भी इसके अंदर शामिल किया अल्लाह ताला ने, इसको ओपन नहीं छोड़ दिया, ठीक है, तो कैद शामिल कर दी। क्या कैद है? बेकदर, यानी हमने कदर के साथ इसको नाजिल किया, अनलिमिटेड पानी नाजिल नहीं किया कि भाई हुआ चला जा रहा है, अच्छा तुम पानी पी करके जो है वो खत्म कर दोगे, गंदा कर दोगे, तो फिर जो है ना वो हम आसमानों से एक नया पानी नाजिल कर देंगे, ठीक है, तो अंदर ही अंदर जो भी नाजिल कर दिया, बस अब ये तुम्हारे जमीन के अंदर, यानी ये बस एक एक लिमिटेड क्वांटिटी है, एक हद है इसकी, ठीक है, बेहद नहीं है ये। तो बढ़ाकर इस तरह इशारा कर दिया कि इंसान ऐसा ज़ईफ़ुल ख़िलक़त है, ठीक है, यानी अपनी तख्लीक में, अपने स्ट्रक्चर में इतना इतना कमजोर है कि जो चीज़ें उसके लिए मदार जिंदगी हैं, जिन चीजों पर उसकी जिंदगी का मदार है, हिज एंड हर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड देम, राइट, दायरे में घूमती रहती है इस चीज के गिर्द, इतना अहम है ये जिंदगी के लिए, जैसे पानी, भाई पानी के अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से पैदा किया, ये भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अगर वो मकदार, यानी इतना ज़ईफ़ुल ख़िलक़त है हम, इतने कमजोर हैं हम, कि अगर इतनी अहम चीज भी मकदार मुकद्दर से जायद हो जाए तो वही उसके लिए वबाल जान और अजाब बन जाती है। यानी पानी की मकदार जो है अल्लाह ताला ने नाजिल तो करी, लेकिन अब हजरत ना उसमें से एक इशारा ले रहे हैं, एक मजीद इशारा ले रहे हैं कि हमारी एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम वॉटर, राइट। हमारी सलाहियत जो पानी से फायदा उठाने की है ना, ये सलाहियत भी एक लिमिटेड है। अगर ज्यादा हो जाए तो वही उसके लिए वबाले जान और अजाब बन जाती है ना। इतनी इतनी फायदेमंद चीज अजाब बन जाती है। पानी जैसी चीज जिसके बगैर कोई इंसान वह हैवान जिंदा नहीं रह सकता, अगर जरूरत से ज्यादा बरस जाए तो तूफान आ जाता है। अभी इंडिया के अंदर वो जो साहिली इलाकों के अंदर बारिश और इतना ज्यादा जो है वो तूफान आ गया और इंसान और उसके सामान के लिए वबाल व अजाब बन जाता है। इसलिए आसमान से पानी बरसाना भी एक खास पैमाने से होता है जो इंसान की जरूरत पूरी कर दे और तूफान की सूरत इख्तियार ना करे, बजुज उन खास मकामात के जिन पर अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा है किसी वजह से तूफान मुसल्लत करने का सबब हो जाए। ठीक है, यानी हरिकेन्स और ये टाइफून्स, एशिया में उनको टाइफून कहते हैं और अमेरिका वगैरह के अंदर उसको हरिकेन कहते हैं, तो अल्लाह ताला की मर्जी से जो है वो ये सारी चीजें भी आती रहती हैं, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। इसके बाद बड़ा गौर तलब मसला ये था कि पानी अगर रोजाने की जरूरत का रोजाना बरसा करे तो भी इंसान मुसीबत में आ जाए, रोज की बारिश उसके कारोबार और मिजाज के खिलाफ है। और अगर साल भर या 6 महीने या 3 महीने की जरूरत का पानी एक दफा बरसा दिया जाए और लोगों को हुक्म हो कि अपना अपना कोटा पानी का 6 महीने के लिए जमा करके रखो और इस्तेमाल करते रहो, तो हर इंसान इंसान भी इतने पानी के जमा रखने का इंतजाम कैसे करें, और किसी तरह बड़े हौजों और घड़ों में भर देने का इंतजाम भी कर लें, चंद रोज के बाद ये पानी सड़ जाएगा, जिसका पीना इस्तेमाल करना भी दुश्वार हो जाएगा। यानी वाटर भी जो स्टोर किया जाता है ना, तो उस वाटर को भी फिर प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, राइट। और हर इंसान के पास ऐसी प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स नहीं होती। ये तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स जहां पर होते हैं वहां पे ये मुमकिन होता है। आज दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल सेलनाइजेशन और प्योरिफिकेशन वाली चीजें आज अवेलेबल हो गई है ना, उससे पहले तो कभी भी अवेलेबल नहीं थी। तो अगर लोगों को कहते हैं कि ये आप स्टोर करके रखें और फिर इस पानी को जो है वो प्योरीफाई भी करते रहें, क्योंकि ये तो कुछ अर्से में खराब हो जाता है। एक जमजम का ही पानी है के जो के खराब नहीं होता, आप उसको कितना लंबा अरसा भी स्टोर करके रखें वो खराब नहीं होता। बाकी पानी तो होते हैं खराब, ठीक है, कीड़े पड़ जाते हैं, और खैर कीड़े तो जमजम में ही पड़ सकते हैं, लेकिन वो वैसा यानी उसकी जो साइंटिफिक डिटेल्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त, लेकिन पानी जो है वो बेसिकली बहुत लंबे अरसे तक आप स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए कुदरत हक जल्ला शानहू ने उसका निजाम ये बनाया कि पानी जिस वक्त बरसता है उस वक्त वक्ती तौर पर जितने दरख्त और जमीनें सैराबी के काबिल हैं वो सैराब हो जाते हैं, ठीक है। फिर जमीन के मुख्तलिफ तालाबों, हौजों और कुदरती गढ़ों में ये पानी जमा रहता है जिसको इंसान और जानवर जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनका जो है वो मकदार इनकी इतनी ज्यादा होती है और एयर से इनका एक्सपोजर भी इतना ज्यादा होता है कि ये एक यानी एक सॉर्ट ऑफ यानी जिसको कहते हैं ना मा मा एक असीर और जारी पानी, ये दोनों चीजें जो है वो इन तालाबों और हौजों और इन सब के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं। इस वजह से ये पानी जो है वो साफ भी रहता है, काबिल इस्तेमाल भी रहता है, मगर जाहिर है कि ये पानी चंद रोज में खत्म हो जाता है। दायमी तौर पर रोजाना इंसान को ताजा पानी किस तरह पहुंचे जो हर खत्ते के बाशिंदों को मिल सके, उसका निजाम कुदरत ने ये बनाया कि पानी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की सूरत में एक बहर मुंजमद बनाकर, बर्फ की सूरत में एक जमा हुआ समंदर बनाकर पहाड़ों के सरों पर ऐसी पाक साफ फिजा में रख दिया जहां ना गर्दो गुबार की रसाई, ना किसी आदमी और जानवर की, और जिसमें ना सड़ने का इम्कान है ना उसके नापाक या खराब होने की कोई सूरत है, ठीक है। यानी गोया के अल्लाह ताला ने रेफ्रिजरेटर्स बना दिए, फ्रीजर्स बना दिए, जैसे हम अपनी गजा को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और उससे ज्यादा जो खराब होने का एहतमाल होता है उनको फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, तो अल्लाह ताला ने नेचुरल फ्रीजर्स बना दिए दुनिया के अंदर जगह जगह, ठीक है। हमारे मुल्कों के भी नॉर्थ में इंडिया पाकिस्तान वो पूरा करिकुलम, वो क्या है करिकुलम नहीं जिसमें K2 है, क्या है, क्या कहते हैं उसको, एक तो कोई हिमालय की रेंज है, फिर हिंदू कश की रेंज है, और फिर वो जिसके अंदर K2 है भाई, क्या नाम है उसका, तो ऊपर की तरफ जो है वो ऐसे रेंजेस बना दिए, उनके ऊपर इतना सारा जो है बर्फ जमी हुई होती है। फिर ये बर्फ का पानी आहिस्ता आहिस्ता रिस रिस कर पहाड़ों की रगों के जरिए जमीन के अंदर फैलता है। कराकुरम, जजाकल्ला, किला। अच्छा, तो जमीन के अंदर फैलता है और ये कुदरती पाइपलाइन पूरी जमीन के गोशे गोशे में पहुंच जाती है, जहां से कुछ तो चश्मे फूट खुद फूट निकलते हैं और नदी नाले और नहरों की शक्ल में जमीन पर बहने लगते हैं। ताजा 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 बताजा जारी पानी करोड़ों इंसानों और जानवरों को सैराब करता है, और कुछ यही पहाड़ी बर्फ से बहने वाला पानी जमीन की तह में उतरकर नीचे नीचे बहता रहता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर की शक्ल में भी ये यानी कुछ बहता भी रहता है, कुछ जो है वो स्टोर भी होता रहता है, और उसको कुआं खोदकर हर जगह निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह कोई जियोलॉजिस्ट नहीं है, राइट? कोई ये यानी ज्योग्राफी के एक्सपर्ट नहीं है, कोई ये जो है वो इस किस्म के कोई साइंसदान नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने बहुत यानी इनका मुताला जो है वो बहुत ज्यादा वसी था, तो इन्होंने अपने उस मुताले और मुशाहदे की बुनियाद पर जो है वो अल्लाह ताला की कुदरत को इस तरीके से सामने रख दिया है। अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो डिटेल्स भी हैं कि भाई हाँ वो दरिया जो है वो हर जगह नहीं होते, और दरिया जो है वो खुश्क हो जाते हैं, और ये हो जाता है वो जाता है। मकसद इसका ये नहीं है कि जी एग्जैक्टली ऐसा ही मामला हर जगह पर होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि अल्लाह ताला ने जो है वो पानी को बर्फानी जगहों से जो है वो दरियाओं के जरिए से फिर जमीन के दूसरे इलाकों में पहुंचाया होता है। कुछ जगहों पर ऐसा नहीं भी होता, वहां पे दूसरे तरीके अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी लेक्स हैं, ये जो ग्रैंड लेक्स अमेरिका और कनाडा के दरमियान है, लेक मिशिगन है, लेक ऑन्टारियो है, इतनी बड़ी लेक्स हैं कि यानी इनका दूसरा सिरा नजर नहीं आता आपको, इतनी बड़ी बड़ी लेक्स हैं ये, तो वो भी पानी के रिजर्वॉयर्स हैं। इनमें कुछ गहरी हैं, कुछ जो है वो चौड़ी ज्यादा है, कुछ जो है वो यानी क्या क्या उनकी हर एक की अपनी अपनी खासियत है। बहरहाल, तो इस पूरे निज़ाम कुरान करीम की आयत मज़कूरा में इस पूरे निज़ाम को एक लफ्ज़ फअस्कन्नाहु फिल अर्ध से बयान फरमा दिया, ठीक है ना? ये है एजाज जो कुरान मजीद अल्लाह ताला के कलाम का है, ठीक है, कि एक फअस्कन्नाहु फिल अर्ध में ये सारे के सारे जो है वो पानी के सिस्टम्स आप शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। आखिर में इस तरफ इशारा कर दिया कि जमीन की तह से जो पानी कुओं के जरिए निकाला जाता है, ये भी कुदरत की तरफ से आसानी है कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं बल्कि थोड़ी गहराई में ये पानी रखा गया है। यानी इतना ज्यादा तो बोरिंग भी हमारे आलात नहीं कर सकते, वो तो कहीं पे बल्कि मारूफुल कुरान के अंदर ही ये हजरत ने लिखा था, जिस जमाने में लिखी थी 1960s या 70s के अंदर, कि मैक्सिमम जो जो बोरिंग हुई है वो कितनी 20 किलोमीटर कुछ अराउंड इस तरह के था, कहीं हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद जो बाद में और भी जो मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह बना करके जो बोरिंग करी है वो भी कोई बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, कोई 100 किलोमीटर से ज्यादा शायद आज तक कोई बोरिंग नहीं हो सकी है, यानी ड्रिलिंग आज तक नहीं हो सकी है। तो फिर उसके बाद वो आ जाता है मेंटल वगैरह आ जाता है ना, जो कि इतना हार्ड है कि उसके थ्रू आपके कोई इक्विपमेंट ब्रेक कर ही नहीं सकता। तो फरमाया कि ये पानी जमीन की गहराई में उतरता चला जाता है जहां तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं है। इसी मजमून को आयत के आखिरी जुमले में इरशाद फरमाया, व इन्ना अला ज़हाबिहिम बिही लक़ादिर। मुमकिन तो था लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया नहीं है अब तक, चाहे तो कर सकते हैं। आगे पानी के जरिए पैदा होने वाली खास खास चीजों को अरब के मिजाज और मजाक के मुताबिक जिक्र फरमाया कि खजूर और अंगूर के बागात इससे पैदा हुए, और दूसरे फलों को एक आम लफ्ज में जमा करके जिक्र फरमा दिया, लकुम फीहा फवाकिहु कसीरा, ठीक है, यानी इन बागात में तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के अलावा हजारों किस्म के फल पैदा किए जिनको तुम महज तफरी ही और शौकिया तौर पर भी खाते हो, ठीक है, यानी बीच में चुगते रहना, ठीक है, चुगने के लिए जो है वो यानी ये एक अल्लाह ताला ने बड़ी यानी फायदा मंद चीज रखी है ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में। आजकल जो हम जंक फूड चुगते भी हैं और बच्चों को भी चुगवाते हैं, तो हमारे बड़े जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब तो उनके जमाने में जंक फूड होता भी नहीं था, और वो यानी उल्टी सीधी चीजें नहीं खाते थे, चाहे वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जंक फूड हो, चाहे जो है वो वैसे ही छोटी छोटी दुकानों में बनाई हुई उल्टी सीधी चीज हो, जैसे वो टॉफियां और जो चुंगम वगैरह। तो उस जमाने में उनको भी जब जरूरत पड़ती थी ना तो वो ड्राई फ्रूट्स ही चुगा करते थे। हमारे हजरत ने एक दफा हमें बताया कि आप लोग जिस तरीके से ये उल्टी सीधी चीजें चुगते रहते हैं ना, तो हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स खाते थे। और हमारे घर में अल्लाह ताला ने हजरत को जब नौकरी वगैरह लगाई और फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा उनको जॉब के ऊपर यानी मिले मुकाम, तो तनख्वाह वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई थी बहुत ज्यादा। तो फरमाते हैं कि हम अपने घर में ना बोरे भर भर करके ये अखरोट और बादाम और इस तरह की चीजें हमारे घर में आती, और हम ये खाते थे जब कभी खाने का शौक होता था या आप मुतालिया कर रहे हैं तो साथ साथ जो है वो इस तरह की चीजें चल रही होती थी। ठीक है, तो जिनको तुम महज तफरीही और शौकिया तौर पर भी खाते हो, यानी पेट भरने के लिए नहीं, जरूरत के तहत नहीं बल्कि तफरीह और शौकिया तौर पर, और इनमें से बाज फलों का जखीरा करके तुम्हारी मुस्तकिल गिजा भी उनसे तैयार होती है। ठीक है, कुछ फ्रूट्स जो है वो बाकायदा गिजा के तौर पर भी खाए जाते हैं, जैसे वो पम्पकिन को कुछ लोग फ्रूट कहते हैं, कुछ लोग सब्जी कहते हैं, लेकिन उसको बाकायदा गिजा के तौर पर भी खाया जाता है। वमिन्हा तअकुलूना का यही मतलब है। आगे खसूसियत से जैतून और उसके तेल के पैदा करने का जिक्र फरमाया क्योंकि इसके मुनाफे बेशुमार हैं, और चूंकि जैतून के दरख्त कोहेतूर पर ज्यादा पैदा होते हैं, कोहेतूर एक एक दरख्त एक एक पहाड़ के ऊपर को थोड़ी पैदा होते हैं, बल्कि उस पहाड़ के ऊपर तो कुछ भी पैदा नहीं होता, तो कोहेतूर पर ज्यादा पैदा होते हैं से क्या मुराद कि कोहेतूर जिस इलाके में है, जिस जगह पर है, पूरे सीना की जो वादी है वो एरिया जो है वो सबसे ज्यादा इसके लिए मशहूर है। और फिर ये यानी एक्सटेंड करता है फलस्तीन और उर्दुन और शाम वगैरह के ये सारे एरिए, इन तमाम इलाकों के अंदर जैतून सबसे ज्यादा पैदा होता है, इसलिए उसकी तरफ निस्बत कर दी गई। ठीक है, वशजरतन तखरुजु फी तूरी सीना, सीना और सीनीन उस मुकाम का नाम है जिसमें कोहेतूर वाकई है। जैतून का तेल तेल की जरूरियात मसलन बदन की मालिश और चिराग में जलाने की भी काम आता है, और खाने में सालन का भी काम देता है। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल ये यानी अगर आप वैसे ले लें तो सर में लगान डालने के लिए और मालिश करने के लिए और खाना पकाने के लिए, कहते ही हैं कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है ना, तो वो खाने पकाने के लिए ज्यादा मुनासिब होता है क्योंकि उसके अंदर फिर दूसरी चीजें शामिल नहीं होती हैं बिल्कुल भी, और बिल्कुल फ्रेश प्रेस करके और डबल प्रेस करके उसको एक्स्ट्रा ज्यादा मुसलमान भी सुन नहीं है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारी को जो है वो म्यूट कर दें। जी
जी
तो क्लास जी एडमिन साहब अगर इनको म्यूट कर सकेंगे तो आप। ठीक है, तो किसी को फरमाया कि तम बुतु बिदुहनी वसिबगिल आकिलीन, जैतून के दरख्त के लिए कोहितूर की खासियत यह है कि ये दरख्त सबसे पहले कोहितूर पर ही पैदा हुआ है, और बास ने कहा कि तूफान नूह के बाद सबसे पहला दरख्त जो जमीन पर होगा है वो जैतून। ठीक है, तफसीर मजहरी के अंदर हजरत ने कुछ फैक्ट्स भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो तूफान नूह का जिक्र यहाँ पर आ गया। अब आगे जो हमने आयात पढ़नी है उसके अंदर भी नूह अलैहि सलाम का जिक्र, बहरहाल कोई तूर के बारे में, ये जैतून के बारे में चंद बातें दिलचस्प। इसके बाद उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला ने जानवरों चौपायों के जरिए इंसान को अता फरमाई ताकि इंसान उनसे इबरत हासिल करे और हक ताला की कुदरत कामिला और रहमत कामिला पर इस्तदलाल करके तौहीद व इबादत में मशगूल हो। ठीक है, इस्तदलाल का मतलब होता है दलील हासिल करना, दलील पकड़ना, सीकिंग एविडेंस। ठीक है, तो इन चीजों पर हम गौर करें और इनको हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के तख्लीक के साथ जोड़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ध्यान भी दिल में रहे। ठीक है ना, और इन चीजों के ऊपर उस ध्यान के साथ जब इंसान नजर करता है ना, तो फिर वो तौहीद उसके सामने खुल करके आती है, अल्लाह ताला की अजमत उसके सामने खुल करके आती है। ठीक है, तौहीद क्या है कि अल्लाह ताला की जो शान है वो वैसी शान किसी की भी नहीं है, और अल्लाह ताला के हुक्म का जो मुकाम है वो मुकाम किसी दूसरे के हुक्म का नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ अल्लाह ही है कि जिसकी अपनी ऐसी शान है और जिसके हुक्म की ऐसी शान है। ठीक है, तो तौहीद की हकीकत जो है ना वो ये है। ये कैसे आएगी तौहीद अब हमारे अंदर, ये जब अल्लाह ताला की अजमत खोलेगी हमारे ऊपर ना, और अल्लाह ताला की अजमत खोलने के लिए कोई अल्लाह ताला की कोई जात नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जो कि हमें नजर आनी शुरू हो जाएगी, कि अल्लाह ताला का इतना बड़ा सा एक हाथ नजर आना शुरू हो गया तो अल्लाह ताला की अजमत हमारे ऊपर खुल जाएगी, राइट। अल्लाह ताला की कोई ऐसी यानी नाउज बिल्ला अल्लाह ताला की कोई हैयत नजर आनी शुरू हो जाएगी तो हम अल्लाह ताला की अजमत, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई बहुत बड़ा सा जो है वो कोई कोई पहाड़ देख लेते हैं तो एक हैबत तारी हो जाती है ना, पहाड़ की साइज को देख करके हैबत तारी होती है, अजमत आती है उस पहाड़ की। शेर को देखते हैं उसकी जो है वो दहाड़ को सुन करके जो है वो उसकी अजमत हमारे दिल में आती है ना भाई। शेर के पास जाए ना वो जो दहाड़ता है तो उसका जो 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 उसका रोर होता है उससे दिल दहल जाते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा हाथी अगर सामने आ जाए तो उसके साइज को देख करके अजमत आ जाएगी, राइट। या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर, तो उस बिल्डिंग की ऊंचाई को देख करके अजमत आ जाएगी। अल्लाह ताला के साथ तो हमारा ये कोई मामला ही नहीं है, ना तो अल्लाह ताला की आवाज आती है, राइट, ना तो अल्लाह ताला का जो है वो कोई हजम हमारे सामने आता है, ना अल्लाह ताला की कोई ऊंचाई हमारे सामने आती है, तो फिर अल्लाह की अजमत कैसे आएगी भाई हमारे अंदर, राइट। तो अल्लाह ताला की अजमत आने का तरीका जो है वो मखलूक की अजमत से मुख्तलिफ होता है। उसका तरीका ये होता है कि हम अल्लाह ताला के ध्यान के साथ कि अल्लाह ताला ही खालिक है हर अजीम चीज का, अल्लाह ताला ही खालिक है हर फायदा मंद चीज का। ठीक है, तो उस फायदेमंद चीज के ऊपर जब हम गौर करते हैं और उसको अल्लाह ताला की तखलीक से जोड़ते हैं तब अल्लाह ताला की अजमत हमारे अंदर आती है। जब अल्लाह की अजमत आती है तब इंसान जो है वो तौहीद का कायल हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके नतीजे में अल्लाह ताला ही की इबादत करता है, अल्लाह ताला ही की अताअत करता है। ठीक है ना, तो ये तौहीद और इबादत जो है वो इस तरीके से आएगी। अब मुसीबत मारा, ये जो हमारे पास हेल्पफोन आया हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना, ठीक है ना, जिसके अंदर के हम हर वक्त जो है वो हमारा फोकस जो है वो उल्टी सीधी चीजों के ऊपर लगा रहता है ना, हर वक्त जो है वो फोन के ऊपर बेवकूफी की चीजें जो है वो देखे चले जा रहे हैं, सुने चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं। तो भाई अल्लाह ताला की इस कुदरत कामिला और रहमत कामिला पर इस्तदलाल कब करेंगे, कैसे करेंगे, राइट। कब्र में फोन है ना, या तो पता नहीं कोई मॉडर्न सिस्टम आने वाला है कि नमाज जनाजा के बाद जो है वो कब्र में जब मुर्दे को उतारा जाएगा तो उसके साथ उसका फोन भी उतार दिया जाएगा, है ना, कि भाई आंटी वहां पे जाकर के गौर ना हुआ करें ताकि इनके साथ एक फोन भी उतार दें अंदर, है ना, और चार्जिंग का कोई सिस्टम जो है वो है ना कब्र के अंदर एक चार्जिंग प्लग भी लगा देते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो पता नहीं जब वो सिस्टम आएगा तो शायद कब्र में भी जाकर के हम वहां पे भी अपने आप को एंटरटेन करते रहेंगे इस फोन से, ठीक है ना, लेकिन अभी तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना। तो फिर क्या कब्र में जाकर के हम इस्तेदलाल करेंगे, कब्र में जाकर के इबरत हासिल करेंगे, वहां तो कोई मखलूक भी नजर नहीं आएगी, पता नहीं वो सांपों और बिच्छुओं को देख करके शायद इबरत पकड़े। भाई इस दुनिया में करना है ना ये सारा काम, तो इस दुनिया में कब करेंगे ये काम, जबकि 24 घंटे हम यही फोन के ऊपर बेवकूफी की चीजें पढ़ते रहते हैं। ठीक है भाई, फोन के ऊपर अगर पढ़ना है भी है तो कुरान की तफसीर पढ़ो, कुरान की तफसीर की जो है वो क्लास अटेंड करो, दीन की कोई चीज सीखो, राइट। फजूल जो है ना वो उल्टे सीधे जो है वो सियासत और फलाना जो है वो अब ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया ढिमकाना हो गया, दीन का उससे कोई फायदा अगर हासिल कर रहे हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन दीन का फायदा तो नहीं हासिल कर रहे होते हैं ना हम कुछ। भाई कल जो बात हुई थी जो दलदल है उसके अंदर बस उतरे चले जा रहे हैं, उतरे चले जा रहे हैं, उतरे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसी वजह से ना तो हमें तौहीद नसीब होती है और ना हमें इबादत की तौफीक नसीब होती है। ठीक है, इसीलिए फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमी लइबरा, और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए तो मवेशियों के अंदर भी हिदायत है, मवेशियों को देख करके उनको इबरत हासिल हो जाती है। ठीक है, यानी तुम्हारे लिए चौपाया जानवरों में एक इबरत और नसीहत है। आगे उसकी कुछ तफसील इस तरह बतलाई, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, कि इन जानवरों के पेट में हमने तुम्हारे लिए पाकीजा दूध तैयार किया है जो इंसान की बेहतरीन गिजा है। हम तुम्हें पिलाते हैं इनके बुतून के अंदर से। वो फिर फरमाया कि सिर्फ दूध ही नहीं, इन जानवरों में तुम्हारे लिए बहुत से बेशुमार मुनाफे और फवायद हैं। वलकुम वलकुम फीहा मुनाफियो कसीरा, कसीर फायदे हैं तुम्हारे लिए इनके अंदर। सिर्फ ये नहीं कि दूध के लिए एक फायदा ही खाली तुम्हें मिलता है इनसे। गौर करो तो जानवरों के जिस्म का एक एक जुज रुआ रुआ इंसान के काम आता है। ठीक है ना भाई, हमारे यहाँ बकरीद में जो होता है कुर्बानी इतनी, तो खाल के ऊपर तो जंगें हो जाती हैं, है ना भाई। इतनी गंदी संदी सी खाल है और यानी देख करके उसको घृणा है, लेकिन वो खाल भी जो है वो लेकर के जा रहे होते हैं। और फिर खाल तो खाल, ओझड़ी जिसके अंदर उनकी नजासत भरी हुई होती है उस ओझड़ी को भी लेके जा रहे होते हैं, वो भी इस्तेमाल में आ रही होती है। ठीक है, और फर जो होता है, शीप वगैरह का जो फर होता है उसका तो आपको पता ही है कितना यानी एक्सपेंसिव किस्म का, उससे जो है वो कोट्स बनती हैं और न जाने क्या क्या। तो एक एक रुआ रुआ इंसान के काम आता है, और उससे इंसान की मईशत के लिए बेशुमार किस्म के सामान तैयार होते हैं। लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, जानवरों के बाल, हड्डी, आंते, पट्ठे और सभी अज्जा से इंसान अपनी मईशत के कितने सामान बनाता और तैयार करता है उसका शुमार भी मुश्किल है। इन बेशुमार मुनाफे के अलावा एक बड़ा नफा ये भी है कि इनमें से जो जानवर हलाल हैं उनका गोश्त भी इंसान की बेहतरीन गिजा है। वो मिनहा ताकुलून, ठीक है ना। एजाज कुरानी देखें कितने कम अल्फाज के अंदर कितनी यानी समंदर को बंद कर दिया, कूजे में बंद करना, ये मुहावरा इस्तेमाल होता है इसके लिए। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरतुन वमिनहा ताकुलून। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर में इन जानवरों का एक और अजीम फायदा जिक्र किया गया कि तुम उन पर सवार भी होते हो और बार बारदारी का भी उनसे काम लेते हो। आज भी हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं, यानी अमीर इलाकों में भी और गरीब इलाकों में तो वैसे भी अभी भी खच्चर, गधे और ऊंट और ये सारी सवारियां इस्तेमाल हो रही हैं। इस आखिरी फायदे में चूंकि जानवरों के साथ दरिया में चलने वाली कश्तियां भी शरीक हैं कि सवारी और बार बर्दारी का बड़ा काम उससे निकलता है, इसलिए कश्तियों को भी उसके साथ जिक्र फरमा दिया। वालैहा वालल फुल्क के तुहमलू, फुल्क यानी कश्तियों ही के हुक्म में वो तमाम सवारियां भी हैं जो पहियों के जरिए चलने वाली हैं। बल्कि मशायख हजरत नहीं, दूसरे मकाम पर और दूसरे मशायख ने जो हवाई जहाज होते हैं तो उनको भी इसी के अंदर शामिल फरमा लिया। ठीक है, जब ये वो कश्ती की जो दुआ होती है ना, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मरसाहा, ठीक है, इन्ना रब्बी लगफूर रहीम, तो वही कश्ती की दुआ जो है, कश्ती में सवार होने की दुआ जो है वो जहाजों के लिए भी फरमाते हैं। देखिए कुछ उलमा से सुना कि वही सुभान लजी सखर अलना हाजा वाली दुआ जो है जहाज पर पढ़नी चाहिए, और कुछ के नजदीक जो है वो फ्लोटिंग किस्म की चीज होती है वो, तो इस वजह से उस कश्ती वाली दुआ पढ़नी चाहिए। बहरहाल तो सारी सवारियां जो है ना वो यहाँ पर इस एक लफ्ज के अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक है जी, कोई सवाल हो किसी को पूछ लें, वरना हम आगे की आयात पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आयत को पहले तिलावत कर लेते हैं, फिर तर्जुमा और तफसीरी है, मारूफ मसाइल बहुत ही मुख्तसर है आयत के। फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकद अरसलना नूहन इला कौमिही फकाल या कौमि इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तकून। فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة ربطوا به حتى بما ذلك الآية فقال سوري بهلي آية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ بنتا ہے اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو, ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا, جیسے رسالہ پیغام بھیجا جاتا ہے اسی طریقے سے بندہ بھی بھیجا جاتا ہے, پیغامبر بھی بھیجا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کے پاس, ٹھیک ہے, ان کی قوم کی طرف. فقالا پس انہوں نے کہا, ہی سیڈ یا قومی اے میری قوم, ٹھیک ہے. میم کے نیچے جو زیر ہے یہ دراصل یائے متکلم کی علامت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا قومی اے میری قوم, اعبدوا اللہ تم سب کے سب, جمع کا صیغہ, تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو, ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی بھی معبود اس کے علاوہ, غیر علاوہ ہو اللہ کی ضمیر ہے یہاں پر, اللہ کے لفظ کی ضمیر ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے علاوہ تمہارے لیے اور کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. الہ, الہ کا لفظ اس کا ترجمہ عربی میں معبود سے بنتا ہے اور اردو میں اگر کریں تو اس کا ترجمہ خدا سے بنتا ہے, لائق عبادت, ٹھیک ہے, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون, افلا, حمزہ استفہامیہ اس کا ترجمہ کیا, فا زائدہ ہوتا ہے, یعنی بس عربی کی خوبصورتی کے لیے فا کا لفظ بیچ میں ڈالتے ہیں, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے, یہاں پر ترجمہ نہیں بنتا. لا نہیں, تتقون تم ڈرتے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, ٹھیک ہے. فقال الملأ الذين, پس کہا ملأ, ملأ سرداروں کے لیے بولا جاتا ہے, لیڈرز جو ہوتے ہیں کسی قوم کے, الذين كفروا ان لوگوں کے سردار جن لوگوں نے کفر کیا, ٹھیک ہے نا, ملأ, ملأ الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سردار, انہوں نے کہا من قومی ہی اپنی قوم سے, ٹھیک ہے, یعنی جب نوح علیہ السلام نے ساری قوم کو خطاب کر کے یہ بات کہی نا, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون, تو سردار جو ہے نا وہ پھر اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا قوم سے, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ جو ہے نا یہ نوح, یہ نہیں ہے کچھ بھی سوائے تمہارے جیسا ایک بندہ, ہے نا, یہ تو ایک عام سا بندہ ہے, تمہارے جیسا بندہ ہے, بشر ہے, رائٹ, بشر, بشر, بشر کا لفظ جو ہے اس کے اندر, یعنی کسی ایسی حکمت والی بات, حکمت کا نقطہ کسی نے بیان کیا کہ اس کے اندر با کا مطلب ہو گیا ود, ٹھیک ہے, جیسے بسم اللہ ہی ود دا نیم آف اللہ, ٹھیک ہے, تو با جو ہے یہ تو ہو گیا وہ والا با, اور شر کا مطلب برائی, تو بشر جو ہے برائی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, یہاں پر برائی سے مراد جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نقص ہوں, جس کے اندر بہت کمزوریاں ہوں, جیسے اوپر جو ہے وہ ہم نے ابھی پڑھا ہے نا کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ کتنی ضعیف ہے, ضعیف الخلقت ہے انسان, ٹھیک ہے نا, تو بشر کا لفظ سے یہاں پر مراد جو ہے نا وہ یہ ہوگی کہ بہت ہی ضعیف الخلقت قسم کی چیز ہے یہ, تو تمہارے جیسا, ٹھیک ہے نا, نوح علیہ السلام تمہارے جیسا بس ہے, یعنی ہمارے جیسا, تمہارے جیسا بس ایک بشر ہی ہے جس کے اندر بہت سارے نقص ہیں. تو کیا کیا انہوں نے, اس کے بعد کیا کہا, یریدو, یہ ارادہ کرتا ہے, یعنی ہی از پلاننگ, واٹ این یتفضل علیکم, کہ یہ تمہارے درمیان یا تمہارے اوپر, یہ تمہارے اوپر جو ہے نا اس کو کچھ فضیلت مل جائے, ٹھیک ہے, یہ جو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ تمہیں جو نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے, بڑا نیک بن رہا ہے, بڑا پارسا بن رہا ہے, رائٹ, تو اس کا اصل میں مقصد کیا ہے, تاکہ یہ تم اس کو جو ہے نا وہ اپنا پیر بنا لو, तुम इसको अपना शेख बना लो, तुम इसको अपना जो है वो यानी मुक्तदा बना लो, ठीक है ना, फजीलत मिल जाए उसको, ये है इसकी असल इंटेंशन, ठीक है ना। युरीदो, इरादा कर रहा है ये, यानी इस ये इसके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, ठीक है। ये कौम के सरदारों ने अपनी कौम से कहा नूह अलैहिस्सलाम की दावत के जवाब में, एज अ रिस्पॉन्स टू नूह अलैहिस्सलाम दावत, ठीक है। वलौ शाह अल्लाहु लअंजला मलाइकता मलाइका, ठीक है, और अगर अल्लाह चाहता तो ये नाजिल करता फरिश्ते, ठीक है। यानी ये जो काफिर थे ये अल्लाह को मानते थे, ठीक है ना। कुरान मजीद क्या क्या हमें बता रहा है कि ये काफिर अल्लाह को मानते थे और अल्लाह को जानते भी थे कि अल्लाह कौन है और अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है, और ये भी पता था कि अल्लाह के फरिश्ते क्या होते हैं, है ना, फरिश्तों से भी वाकिफ थे। तो अपनी कौम को बता रहे हैं ना कि अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते नाजिल करता, ठीक है ना। यानी ये लोग जो थे ये वैसे प्योर, ये एथियस नहीं थे, राइट, ये कोई नेचुरलिस्ट नहीं थे, ये कोई डार्विन थ्योरी के मानने वाले लोग नहीं थे, अपने जमाने का डार्विन, उनके जमाने में भी कोई डार्विन टाइप की कोई चीज अगर होती उसको मानने वाले नहीं थे, ये अल्लाह को और अल्लाह के फरिश्तों को मानने वाले थे, है ना। आमन तो बिल्लाही व मलाइकती ही, यहां तक तो थे ना भाई, ठीक है ना, आमन तो बिल्लाही व मलाइकती ही, जो हमारे ईमान के पहले दो जो अकायद हैं, ईमान मुफस्सल में, राइट। तो कौम नूह अलैहिस्सलाम यहां तक थी, ठीक है ना, अल्लाह पर भी ईमान रखते थे और फरिश्तों पर भी ईमान रखते थे, ठीक है ना। मा समिना बिहादा फी आबाइन अव्वलीन, ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या कहा, मा समिना, हमने नहीं सुना बिहादा, ये वाली बात जो ये नू कर रहा है नाउज बिल्ला अपने, क्योंकि वो तो नू अलैहि सलाम कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे ना, तो ये जो नू ये बात कर रहा है ना, मा समिअना बिहादा, हमने ये बात नहीं सुनी, फी आबा इनल अव्वलीन, अपने आबाओ अजदाद से, ठीक है, हमने ये वाली बात नहीं सुनी, क्या क्या कौन सी वाली बात, उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तकून, ये बात जो है ना, ये हमारे हमारे अंकल्स एंड आंटीज ने ये वाली बातें नहीं करी थी, ठीक है, हमारे अम्मा दादा दादी नानी पुप्पी चचा खालू खाला, राइट, मामा मुमानी, हमने इनसे ये बातें नहीं सुनी थी, ठीक है ना, जो ये नू कर रहा है, ठीक है ना, इबरत, ठीक है ना, गौर करना चाहिए हमें इन बातों के ऊपर, ठीक है। तो मसला इनको किसके साथ था, अल्लाह के साथ मसला था कोई, इनको मसला इनको उनको फरिश्तों के साथ था, मसला इनको किन के साथ था, मसला इनको नूह अलैहिस्सलाम के साथ, और बस, ठीक है ना जी, और यही असल मसला भी है, ठीक है। इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना, फिर उसके बाद जो है ना वो स्मियर कैंपेन, जैसे आजकल भी बहुत ज्यादा चल रही है स्मियर कैंपेन, इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्ना, ठीक है, के नहीं है, यहाँ पर जो इन है ये नफी के लिए इस्तेमाल हुआ, नहीं है वो यानी वो नूह अलैहि सलाम इल्ला रजुलुन, सिवाय एक मर्द के, बिही जिन्नतुन, के जिसके ऊपर जिन चढ़ गए हैं, दीवाना हो गया ये, राइट, इसके ऊपर जो है ना वो यानी ही हैज बिन पोजेस्ड, पोजेस्ड जिन, यहाँ पे वो जन्ना नहीं है, यानी ये जिन्नतो नहीं है, जन्नतो नहीं है, जन्नत वाली गार्डन वाली, ठीक है ना, पैराडाइज वाला जन्नत नहीं है, जिन, ठीक है ना, पोजेस्ड बाय जिन्स, ठीक है। फतरबसु भी हत्ता इन, सो राह देखो उसकी एक वक्त तक, ना वेट एंड सी, ये चंद दिनों में ना ये इसका गुबार जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, ये जो है ना अपनी मौत मर जाएगा, ये बस थोड़ा सा इसके ऊपर एक जुनून चढ़ा हुआ है इस वक्त, जुनून का लफ्ज जो है वो भी जिन से ही निकला, ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के ना इसके ऊपर जिन विन गालिब आए में, बस रहने दो इसको, इग्नोर करो इसको अभी, ठीक है। तो फतरबसु भी हत्ता हीन, ठीक है, तरबसु यानी इंतजार करो, राह देखो, और लेट द टाइम टेक इट्स टोल, हत्ता हीन, एक एक सर्टन टाइम तक, ठीक है ना, हीन मतलब वक्त, एक लम्हा, एक मौका उस वक्त तक जो है वो देखो, बस तमाशा देखो। काला, नूह अलैहिस्सलाम ने उनका ये एटीट्यूड, उनका ये रेस्पॉन्स जो देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ मुतवज्जो हुए और कहने लगे, रब्बी, ए मेरे रब, उनसुर उनसुरनी बिमा कज़्ज़बून, मेरी मदद कीजिए इस, ये जो ये झुटला रहे हैं, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु तकज़ीबन का मतलब होता है ये मुझे ये झुटला रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो वो बोल ही रहे थे लेकिन यहाँ पर झूठ बोलने का तस्करा नहीं किया बल्कि यहाँ पर झुटलाने का तस्करा किया कि मैं इनको जो बात कह रहा हूं ना ये मेरी बात को झुटला रहे हैं, जो कि मेरी जात पर भी फिर उतरता है कि मेरी बात को झुटलाना, मेरी जात को झुटलाना कि मैं झूठा हूं, जब भी तो उनको झूठी बात कह रहा हूं जिसको कि ये मानने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आप मेरी मदद फरमाइए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके अल्लाह से मदद मांगी। फअौहैना इलैही, फिर हमने वही करी उसकी तरफ, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी नूह अलैहिस्सलाम को हमने फिर ये पैगाम भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से या जैसे भी, ठीक है ना, तो हमने उसको वही करी के अन अन, ये नून के नीचे जेर जो है ये जोड़ने के लिए खाली, लेकिन है अन अन का मतलब के, इस्नाइल फुल्का, मैन्युफैक्चर ए बोट, ठीक है ना, कोई कश्ती नुमा चीज जो है वो तुम बनाओ, इसना तस्ना, ठीक है, सनअत, यहां पर तखलीक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इवन सनअत के मानी में भी तखलीक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, बल्कि क्योंकि जब आप बाकायदा कोई इस किस्म की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो वो तो बहुत ही ज्यादा, यानी क्या कहते हैं, यानी इवन आउटवर्डली जो है ना वो यानी सनत ही नजर आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ही नजर आती है, उसमें कोई तखलीक वाली वाली चीज नजर नहीं आती। स्पेशली जब यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम को जो ये बात बताई गई ना तो अल्लाह ताला जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से उनको सिखला भी रहे थे कि कश्ती ऐसे बनाओ, कहा जाता है यानी किताबों में लिखा या उलमा ने से सुना कि कश्ती इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लोगों को कश्ती बनानी नहीं आती थी, ठीक है, तो नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया, तब दुनिया को पहली कश्ती नजर आई, ठीक है ना। जिस तरीके से दुनिया के अंदर जो फंडामेंटल बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं वो बाकी भी अंबिया के जरिए से अल्लाह ताला ने इंसानों को सिखाई और फिर दूसरे इंसानों ने उसके ऊपर मजीद बिल्ड किया, ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि पहिया जो है वो सबसे पहली ईजाद है, तो पहिया वाकई इसके बारे में यानी है कहीं हमारे ट्रेडिशन में भी लिखा हुआ किताबों में भी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहिया बनाना सिखलाया और पहिए से फिर जो है ना ये यानी सारी गाड़ियां जो है बेसिकली पहिए की बुनियाद पर बनती हैं, ठीक है, तो अब दुनिया ने उस पहिए की बुनियाद पर पहले बैलगाड़ी बनाई होगी, घोड़ा गाड़ी बनाई होगी, ऊंट गाड़ी बनाई होगी और उसके बाद फिर आगे आगे चलाते गए मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां। कलम की टेक्नोलॉजी, हाउ टू राइट विद ए पेन, ये इदरीस अलैहिस्सलाम के जरिए से सिखलाई, ठीक है ना, उसी तरीके से बहुत सारी और चीजें नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से, कश्ती, ठीक है, बोट ने यानी ये शिप इंडस्ट्री नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से दुनिया में पहुंचाई है, तो उनको हमने वही करी कि तुम फुल्क बनाओ, बेअयुनिना, हमारी निगाहों के सामने, यानी वी विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग यू, ठीक है ना। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से आती रहती हैं, ये करो अब ये करो, उसको ऐसे जोड़ो, उसको ऐसे लगाओ, उसको ऐसे लगाओ, और अल्लाह ताला तो हर चीज को देख ही रहे होते हैं, बे आयुनिना व वहयिना, ठीक है ना, हमारी हमारे हुक्म से, हमारी वही के जरिए से, अब इसके अंदर यानी मेथोडोलॉजी भी आ गई, इसके अंदर जो अल्लाह का हुक्म भी आ गया, और फैजा जा अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आएगा, बस जब आएगा, यहाँ पे इजा जो है तो उसके बाद फेले माजी है, ठीक है, जा का मतलब आ गया या आया, ठीक है, लेकिन इजा के बाद जब आ जाता है तो ये फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो जब हमारा हुक्म आएगा, अमरुना, हमारा हुक्म, वफारत तन्नूरु, और तन्नूर में से जो है ना वो गशिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। गशिंग किस चीज की शुरू होगी, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। एक तन्नूर होगा जिसका आगे पढ़ भी लेंगे, ठीक है ना, तन्नूर जिसमें रोटियां पकती हैं और पठान यूजली जो है वो हम की रोटियां लेकर के आते हैं, या इवन दूसरे भी लोग तन्नूर में बनाते हैं रोटियां, वही वाला तन्नूर जो है वो बनवाते हैं कि ऐसे ही कोई तन्नूर था, तो उसमें से पानी जो है वो गश करना शुरू हो जाएगा। फस लुक फीहा, बस तुम डाल दो उसके अंदर, यानी इस कश्ती को जो है ना वो उस पानी के अंदर डाल देना। मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि, ठीक है, हर चीज के दो दो जोड़ों के साथ, हर चीज का जोड़ा दो दो, ज़ौजैन इस्नैनि, यानी हर चीज जो जो अब हर से मुराद कितनी कितनी बड़ी कुछ कश्ती थी भाई, राइट, उसके अंदर जो है वो डायनासोर भी डाल रहे हैं, उस जमाने में तो डायनासोर भी होते होंगे, ठीक है, उनको भी डाल रहे हैं, नहीं डायनासोर को तो नहीं डाला भाई, ठीक है ना। एक थ्योरी जो डायनासोर की दुनिया से एक्सटिंक्शन की है वो ये भी है कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा तूफान आया कि जिसके अंदर ये डायनासोर जो है वो डूब के मर गए, ठीक है। और दूसरी थोड़ी थ्योरीज और भी हैं इन लोगों की, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वगैरह जो स्टडी करते रहते हैं, कि जी वो मीटियोर शावर एक ऐसा आया था कि उस मीटियोर शावर के अंदर जो है डायनासोर सारे के सारे मर गए, ठीक है ना, बाकी लोग नहीं मरे बस डायनासोर मर गए, तो भी है। बहरहाल तो अब इस कश्ती में कुल्ली कुल्ली ज़ौजैन इस्नैनि का मतलब जोड़े जोड़े जो है ना उनको रख दो, ठीक है। अब जो पानी में जिंदा रहने वाले जानवर हैं उनको तो इसके अंदर नहीं चढ़ाया ना, क्योंकि पानी के अंदर तो उनको कोई नुकसान ही नहीं होने वाला है। एम्फीबियंस, उनको भी पानी में नुकसान नहीं होने वाला है, तो बस वही रहेगा ना फिर जो के पानी में जिंदा नहीं रह सकते, और जो उस इलाके में मौजूद थे। अब जो है वो नूह अलैहिस्सलाम साउथ अफ्रीका जा करके वहां से जो है वो शेर को पकड़ के ला रहे हैं, और यूरोप में और अमेरिका में जाकर के चीजों को पकड़ के ला रहे हैं, राइट, ऐसा ऑब्वियसली नहीं था, ठीक है। उस इलाके के अंदर जो चीजें मौजूद थी इस तरह है कि उनको सवार कर लिया इंसानों के साथ साथ, ठीक है। कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ा अलैहि अल-क़ौलु मिन्हु, और अपने अहलो आयाल को भी, अहलका तुम्हारे जो घर वाले हैं, इल्ला मन सबक़ा अलैहि अल-क़ौलु मिन्हुम, सिवाय उन लोगों में से, उन लोगों के यानी तुम्हारे घर वालों में से, सिवाय उन लोगों के जिनकी किस्मत में पहले से ठहर चुकी है, हो गए मन सबक अलैहि, जिनके ऊपर जो है ना यानी क्या कहते हैं, जिनकी जिनके ऊपर मोहर लग चुकी है, जिनका फैसला हो चुका है कि भाई इन्होंने सवार नहीं होना तुम्हारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ना अल्लाह ताला की तकदीर और इंसान की का इख्तियार, ये दोनों चीजें एक मिक्सअप तरीके से हमारे सामने आ रही हैं, कि इंसान का जो इख्तियार होता है कि वो नबी की बात नहीं मानता, ठीक है, ये इख्तियार जो होता है ना ये अल्लाह ताला के इल्म में पहले से होता है कि उसने नबी की बात नहीं माननी है। तो अल्लाह ताला ना अपने कुरान मजीद के अंदर कहीं कहीं ऐसे भी जिक्र कर देते हैं अपने जलाल को और अपनी कंप्लीट कंट्रोल को हमारे सामने खोलने के लिए, कि इनके ऊपर ना हमारा हुक्म चल चुका, ये अल्लाह ताला का एक एक जलाली अंदाज होता है, ठीक है। इल्ला मन सबका अलैहिल कौलु मिन्हु, बहुत ही डरा देने वाला और यानी खौफजदा कर देने वाला एक स्टाइल होता है, और ये कुफार के ऊपर जो कि नबी के शदीद मुखालफत करते हैं ना, और मुखालफत में अल्लाह ताला की नेमत की सबसे ज्यादा नाकदरी करते हैं ना, तो उनके बारे में फिर अल्लाह ताला का इस तरह से एक जलाली हुक्म आता है, ठीक है, कि इनकी इनकी जो है ना वो यानी इनकी तो मोहर लग चुकी है इनके ऊपर, जो हमारा कॉल जो है ना वो तो पहले से बंद साबित हो चुका है। इसमें इस बात की नफी नहीं होती कि हर इंसान के सामने अल्लाह ताला ने खैर और शर का इख्तियार दिया होता है, वो अपने इख्तियार के साथ खैर को कबूल करता है और वो अपने इख्तियार के साथ शर को कबूल करता है, या अपने इख्तियार के साथ शर को कबूल करता है, राइट। अल्लाह ताला किसी को फोर्स नहीं कर रहे होते कि तुम खैर को कबूल करो, अब उसके पास शर का ऑप्शन ही कोई नहीं, अल्लाह ताला किसी को फोर्स नहीं कर रहे होते कि तुम शर को कबूल करो, उसके पास खैर का ऑप्शन ही नहीं। ये जो अल्लाह ताला की बात है ना, इल्ला मन सबक अलैहि القول, कि जिसके ऊपर मेरा कौल पहले ही जो है वो तय हो चुका, ये उस इख्तियार की नफी नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह ताला का गुस्सा और जलाल दिखा रहा है, ठीक है ना भाई। यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली की बात हो रही है ना, वह अहला का, तुम्हारी फैमिली, तो भाई फैमिली के अंदर जो लोग होते हैं नबी की फैमिली के अंदर, उनको कितनी बड़ी नेमत मिली होती है नबी की शक्ल में, है कि नहीं। अल्लाह का नबी, अल्लाह का सबसे मुकर्रब बंदा, उनकी फैमिली में पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने, है ना भाई। औरत है, उसका शौहर अल्लाह का नबी, बेटा है, उसका बाप अल्लाह का नबी, तो ये छोटी नेमत है कोई? ये कोई मामूली नेमत है कि आपका बाप जो है वो अल्लाह का नबी, आपका शौहर अल्लाह का नबी, ठीक है ना। ये तो बहुत बड़ी नेमत है ना अल्लाह ताला की। और फिर वो जो बीवी है वो उसको नबी मानने से इनकार कर दे, बेटा उसको नबी मानने से इनकार कर दे, उसकी बात मानने से इनकार कर दे, तो ये जो हरकत है ये सबसे बड़ी नाकदरी है कंपेयर टू समवन जो के गैर रिश्तेदार है, रिश्तेदार नहीं है नबी का, वो नबी का इनकार करे, वो भी कुफर है, वो भी अजाब के लायक बनता है, राइट। लेकिन उसको इतनी बड़ी नेमत नहीं मिली थी जितनी के नबी के अहले खाना को मिली थी, राइट। तो अहले खाना जब इनकार करते हैं ना, तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। बात समझ में आ रही है ये? कैसे, हाउ डज इट मेक इट मोर, यानी वर्दी ऑफ पनिशमेंट, जब घर वाले इनकार करते हैं। भाई देखें, घर वाले जब इकरार करते हैं, राइट, घर वाले जब इकरार करते हैं नबी का, तो उनको नेमत भी तो सबसे बड़ी मिलती है ना। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो क्या यही पढ़ते हैं खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ता है कोई? ये तो उस वक्त पढ़ते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम पढ़ते हैं, तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, वरना दुरूद शरीफ जो है वो क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, राइट। इसको कहते हैं छोटा दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटा दुरूद शरीफ नहीं कहते, राइट। तो छोटा दुरूद शरीफ जो हर ईमान वाला पढ़ता है, उसमें वो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जहां सलात व सलाम पढ़ रहा होता है, वहीं आले नबी, अभी आले नबी के ऊपर भी पढ़ रहा होता है, नबी के घर वालों के ऊपर, जिसमें बीवियां भी शामिल हैं, और बीवी और सॉरी बेटी और दामाद और नवासे भी शामिल हैं, राइट। इन लोगों ने नबी को मान लिया, क्या मुकाम अता फरमाया अल्लाह ताला ने इनको भाई। जिस तरीके से जो घर वाले मान लेते हैं उनको सबसे ऊंचा मुकाम मिल जाता है, उसी तरीके से जो घर वाले नहीं मानते उनको सबसे बड़ी सजा भी मिलती है, बिल्कुल बराबर बराबर वाला मामला है, ठीक है ना। तो यहां पर नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों की बात हो रही है, वह अहलका इल्ला मन सबक अलैहिल कौल मिन्हु, अल्लाह ताला का जलाल है ना, जिनके ऊपर, जिनकी किस्मत में पहले से ठहर चुकी है मेरी बात, वला तुखातिबनी फिल लजीना ज़लम। और यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और भी ज्यादा जलाल, और मुझसे आप बात भी मत कीजिएगा उन लोगों के मुतालिक जिन्होंने जुल्म किया, वला तुखातिबनी फिल लजीना ज़लम। कितना अल्लाह ताला का जलाली खिताब है यहां पर, किसके बारे में यह खिताब? नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किसके बारे में खिताब किया था? आप बता दें, अगर पता तो होगा इंशाल्लाह सबको, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से किसके बारे में खिताब किया था? जी कौम के लोगों के बारे में खिताब किया था, कौम के सरदारों के बारे में, या कौम के गरीबों के बारे में खिताब किया था? अल्लाह, ये तो बेचारे गरीब थे, इनको तो आप छोड़ देते ना, ये तो बेचारे गरीब थे, इनको तो इनके इनके बड़ों ने जो है वो गुमराह कर लिया, तो आप इनको माफ कर दीजिए। नहीं, नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में खिताब किया, अपने बेटे के बारे में खिताब किया था, है ना, जिसने कहा था सआवी इलल जिबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा और मैं जो है वो इस पानी से बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उस बेटे के बारे में अल्लाह ताला से खिताब किया, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ला तुखातिबनी, फिल्लज़ीना ज़लमू, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये तो बहुत बड़ा जालिम है, आप मुझसे इसके बारे में बात भी ना कीजिए, है ना? क्योंकि भाई बेटे थे तुम, तुम्हें तो अपने बाप का वारिस बनना चाहिए था, जैसे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वारिस बने, राइट? कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा मकाम अता फरमा दिया। नूह के बेटे, तुम्हें तो मैंने प्लेट में रख करके इतनी बड़ी नेमत दे दी थी, हमारे कहते हैं ना उर्दू के अंदर, प्लेट में रख करके दिया था, फिर तुमने उसको मुस्तरद कर दिया। जलाल आता है अल्लाह ताला को इसके ऊपर, राइट? इसी वजह से जो उलमा सुलहा होते हैं ना, उनके खानदान वाले, घर वाले जो है ना, उनको थरथरा जाना चाहिए इस बात को देख कर, सुन करके थरथरा जाना चाहिए। उनके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और अगर वो नाकदरी करेंगे, उनके ऊपर अजाब भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा आएगा। ठीक है, वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लम इन्नहुम मुग़रकून, बेशक वो तो गर्क होने वाले हैं। फ़इज़स्तवैता अंता, फिर जब तुम चढ़ चुके यानी बराबर हो गए, यानी इस्तवा यस्तवी का मतलब होता है लेवल हो जाना, बराबर हो जाना, ठीक है, यानी तुम कश्ती के ऊपर चढ़ गए, ठीक है ना? कश्ती का जो लेवल, जाहिर है जमीन के लेवल से ऊंचा होता है, तो तुम भी उस लेवल के ऊपर पहुंच गए, जैसे जो बोट का जो है वो शिप का एक डेक होता है, तो जो चढ़ने वाले जो होते हैं वो डेक ऑफ द शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इधर सभी अंता, ठीक है ना, वमम माका अलल फुल्की, और जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ देने वाले, तुम्हारे मानने वाले, वो कश्ती के ऊपर चढ़ गए। फकुल, बस तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें हैं उस जात के लिए, नजाना, जिसने हमें निजात दे दी, मिनल कौमिज़ ज़ालिम, पानी से निजात दे दी नहीं, जालिमों की कौम से निजात दे दी, राइट? गुनाहगारों की कौम से हमें निजात दे दी, ठीक है? क्योंकि पानी ये एक तकलीफ देने वाली चीज तो है, राइट? ये एक मुश्किल चीज तो है कि भाई पानी से जो है ना वो बंदा मर भी सकता है, और पानी के अंदर जो है उसकी सांस उखड़ सकती है, राइट? लेकिन जो इंसानों की तकलीफ होती है ना, इंसानों की पहुंचाई हुई तकलीफ, ये पानी की पहुंचाई हुई तकलीफ से भी ज्यादा होती है। तो जब इनको निजात मिली कश्ती में चढ़ करके, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहे हैं? ए अल्लाह, तूने हमें तूफान से निजात अदा फरमा दी, पानी से निजात अदा फरमा दी, वरना हम डूब के मर जाते। नहीं, शुक्र कर रहे हैं, ए अल्लाह तूने हमें इन इंसानों से निजात अदा फरमा दी, जालिम इंसानों से, ठीक है? वकुर, और कह दीजिए रब अंजिलनी मुंजलम, ए मेरे रब अंजिलनी, मुझको उतारिए, अंजला युंजलो इंजाल का मतलब उतारना, ठीक है ना, मुझे उतारिए, मुंजलम मुबारकन, एक मुबारक उतारना, यानी यहां से जब मैं उतरू ना कश्ती से, तो मेरा उतरना जो है वो एक बरकतों वाला उतरना हो। वह अंत खैरुल मुंजिनीन, और आप जो है बेहतरीन उतारने वालों में से हैं, आप बेहतरीन उतारने वाले हैं, है ना, सबसे बेहतर है, खैर, खैर का तर्जुमा होता है सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा बेहतर, ठीक है? और मुंजिल का मतलब नाजिल करने वाला, तो सारे नाजिल करने वालों, सारे उतारने वालों में से आप सबसे बेहतर नाजिल करने वाले हैं। इन नफी ज़ालिका लआयात, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं। व इन कुन्ना लमुबतलीन, और बेशक हम हैं तुम्हें आजमाने वाले, लमुबतलीन, ठीक है, यानी हम निशानियां तुम्हारे सामने बयान करते रहेंगे और देखते रहेंगे, हु इज पेइंग अटेंशन एंड हु इज इग्नोरिंग आवर आयात, आवर निशानियां, राइट? ये हम निशानियां जो तुम्हें, तुम्हें 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 बता रहे हैं ना, तुम्हें दिखा रहे हैं ना, ये स्टोरी बुक्स लिखने के लिए नहीं दिखा रहे, ये बेड टाइम स्टोरीज बच्चों को सुना करके सुलाने के लिए तुम्हें नहीं बता रहे, बल्कि ये सारी निशानियां जो हैं, ये हम तुम्हें जांचने के लिए बता रहे हैं कि तुम इनसे कुछ सीखते हो कि नहीं सीखते हो, तवज्जो करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? या तुम इनको इग्नोर करते हो, इनकी नाकदरी करते हो, ठीक है। तो एक ईमान वाला ना इस दुनिया के अंदर हर वक्त अटेंटिव रहने के लिए भेजा गया है, अल्लाह की तरफ से निशानी आ रही है। ये निशानियां जो है, निशानियां ना, इनका इनकी शॉवर हो रही होती है हमारे ऊपर, जिस तरह मीटियोर शॉवर है ना, बारिश हुई मीटियोर्स की, ठीक है, उसी तरह के तरीके से एक ईमान वाले के ऊपर अल्लाह की निशानियों की बारिश हो रही होती है, राइट। और अच्छा ईमान वाला कौन होता है, जो कि इस बारिश से जो है ना वो फायदा उठा रहा होता है ना। बारिश से फायदा उठाने वाला कौन होता है, वो प्याले की मिसाल देते हैं ना हमारे मशायख, कि प्याले को अगर आप सीधा करके रखेंगे, जैसे प्याला अप यानी जो साइड अप होता है, जिसका प्रॉपर साइड होती है, तब उसके अंदर जो है वो बारिश भरेगी, और अगर ये प्याला आप उल्टा करके रख दें तो बारिश जो है वो इसके एजेस के ऊपर गिर गिर करके वो जाया हो जाएगी, प्याले के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। भाई बारिश तो हो रही है लेकिन प्याला उल्टा रखा हुआ है, बिल्कुल हमारे दिल का भी यही हाल होता है, हम अपने दिल के प्याले को जो है वो निशानियों की तरफ जो है ना वो उल्टा करके रख देते हैं। अल्लाह की निशानियों की बारिश हो रही है हमारे ऊपर, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा होता उनसे, क्योंकि हमने अपने प्याले का रुख जो है ना वो सोशल मीडिया की तरफ किया हुआ है। आज के दौर में सोशल मीडिया, पिछले दौर में जो है वो दूसरा मीडिया, और उससे पहले जो है वो गाने बजाने वालियों का मीडिया फॉर्म है ना, जब जब जो है वो टीवी स्क्रीन नहीं थी गाने बजाने वालियों को दिखाने के लिए, तो जो है फिजिकली गाने बजाने वालियां, लोग जो है वो उनके मुजरे में जाते थे, उनके इलाकों में जाते थे, वो गाने सुनते थे, और जो है वो उल्टे किस्म के उल्टे सीधे जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं, तो बहुत दूसरे किस्म के खेल कर रहे हैं, है ना। तो दिल का रुख जो है वो अल्लाह की निशानियों से हटा करके दूसरी चीजों की तरफ कर लिया, अब इनको इन अल्लाह की निशानियों को कोई फायदा नहीं हो रहा, फेल हो गए इस इब्तिला के अंदर। लमुबतलीन का लफ्ज कहां से निकला, इब्तिला से निकला, इब्तिला का मतलब क्या होता है, आजमाइश, फेल हो गया बंदा आजमाइश में तवज्जो ना करने की वजह से, राइट। और जिसने तवज्जो कर ली तो वो फिर अवॉइड कर ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि आपकी तवज्जो बारिश की तरफ हो और बारिश आपको छुए बगैर गुजर जाए, ये हो सकता है किसी के साथ, कि बंदे की तवज्जो बारिश यानी उसका मुंह बारिश की तरफ हो, उसका जो है वो यानी बारिश से उसने अपने आपको एक्सपोज किया हुआ, और फिर वो कहे कि जी मुझे तो बारिश टच ही नहीं करती, मुझे तो बारिश से कोई फायदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। तो बंदे को बारिश से फायदा उठाने के लिए सिर्फ क्या करना है, अपना रुख बारिश की तरफ करना है, राइट। उसी तरीके से अल्लाह की निशानियों से फायदा उठाने के लिए ऑल वी हैव टू डू उस तरफ मुतवज्जे हो जाएं, उस तरफ मुतवज्जे हो जाएं। कोई डेंट पेल निकालने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उठक बैठक करने की और जो है वो आसमान और जमीन के कुलाबे मिलाने की और बड़ी बड़ी जो है वो किताबें छान मारने की और जो है वो बड़े बड़े जो है वो इंस्टीट्यूशंस में जाने की, इन सब की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो आप अच्छी चीजें उनमें से जो है वो आप उनकी तरफ जाएं बाद में जाएं, लेकिन निशानियों से फायदा उठाने के लिए ऑल वी हैव टू डू इज टू बिकम फोकस्ड। और ये बात हमारे दुश्मन को, अजली दुश्मन शैतान को अच्छी तरीके से ये बात पता है कि इनका फोकस बन गया, ये कामयाब हो गए, मेरे हाथ से निकल गए, तो उसकी सारी जो मेहनत है वो है हमें डी फोकस करने के लिए, डी फोकस करना, यानी दिस इज ऑल ही हैज टू डू, राइट। अब वो डी फोकस करने के लिए उसकी मेहनतें चलती रहती हैं, कभी पुराने जमाने के तौर तरीकों से डुगडुगी तमाशे और उल्टी सीधी पतंगबाजी, तो कबूतरबाजी, तो बैतबाजी, शेरबाजियां, उल्टे फजूल किस्म के, है ना, पुराने जमाने के इंसानों को इस तरीके से वो डी फोकस करता था। फिर उसके बाद 1950s में जो है ना वो इसका जो दज्जाल वाला सिस्टम था वो खूब मजबूत हो गया, तो टेलीविजन इजाद कर लिया इसने, टेलीविजन इजाद करके इसने जो कामयाबी हासिल करी है उतनी कामयाबी उसको शायद हजारों साल में हासिल नहीं हुई होगी, कि जितना मैस उसने लोगों को डिफोकस करना शुरू किया टेलीविजन के जरिए से, और फिर इसी टेलीविजन को इम्प्रोवाइज करते 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 ये फिर फोन के ऊपर लेकर के आया। अब जो है वो कोई कहता है जी किसी से बात हुई, पता नहीं वो सुन रही है क्लास के नहीं सुन रही है, कहने लगी जी घर में टीवी तो बंद रहता है हर वक्त, टीवी तो हर वक्त बंद रहता है, यानी बहुत नेकी का काम करते हैं जी, टीवी तो बंद रखते हैं। मैंने कहा जी वो हर बंदे के हाथ में जो एक टीवी है, हाँ ये बड़ी मुसीबत है वाकई, हर बंदे के हाथ में टीवी है, तो अब उस टीवी की क्या जरूरत है भाई जो आपने दीवार पे लगाया हुआ है, जब हर के हाथ में आपने टीवी दे दिया। हत्ता के बड़े तो बड़े जिनको के अपनी नजासत साफ करनी नहीं आती, उनके हाथ में टीवी दिया हुआ है। हमने कल 2 अरब बच्चों को देखा है यहाँ, कल तो खैर नहीं, चंद दिन पहले 2 अरब बच्चे ना वो कपड़े भी पूरे नहीं पहने हुए और हाथ में इतना बड़ा सा टैब लेकर के जो है वो भागे चले जा रहे हैं कहीं। तो ये क्या है ये? और हमारे यहाँ भी कितने लोगों ने अपने जो है वो यानी टीन एज से पहले ही जो है बच्चों को जो है वो टैब दिया हुआ है, तो फोन दिया हुआ है, पर मेरी जान ना खाएं किसी तरीके से, ये मेरी जान छोड़ें, ये मस्त लगे लगे रहें ये टैब के साथ, मैं चाहे अपने अपने मनमर्जी की जिंदगी गुजारती फिरूं या फिराऊं फिरूं, जो मर्द भी यही कहते हैं औरतें भी यही कहती हैं, ठीक है। तो भाई जब आप इस तरीके से डिफोकस हो जाएंगे और अपनी औलादों को डिफोकस कर देंगे, तो अल्लाह ताला की आजमाइशों के अंदर तो फिर नाकाम हो जाएंगे ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई कब्र में जाने के बाद, फिर हिसाब का वो तो सब आगे सिलसिला चलता रहेगा, वो फिर कोई टर्निंग बैक पे थोड़ी है उसके अंदर, लेकिन अगली जिंदगी के अंदर पर टैब नहीं देंगे अपने बच्चों को। खुलासे तफसीर इंशाल्लाह अगली क्लास पढ़ते हैं, अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आपको नवाना अलहमदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम।